ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ 2025 का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लगभग 7000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई महाकुंभ परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है। विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि उपशमन और तैयारी संबंधी कारगर उपाय सुनिश्चित किए जाएं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में भारत के लिए ग्रीन स्टील वर्गीकरण प्रणाली का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य के अनुरूप इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये कम उत्सर्जन वाले इस्पात की ओर भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्यसभा के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ पार्टी नेताओं के कथित संबंधों पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। श्री नड्डा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति पद का सम्मान न करने की भी आलोचना की। कांग्रेस पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली विधानसभा क्षेत्र से, संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट से, हारून यूसुफ को बल्लीमारान सीट से, रागिनी नायक को वजीरपुर से, अब्दुल रहमान को सलीमपुर से और अनिल भारद्वाज को सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन से दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण का भागीदार बन गया है। नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने नेपाल की सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास, कार्यशालाएं और संगोष्ठी सहित रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। भारत थाईलैंड की 9वीं रक्षा वार्ता कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल थारापोंग मलकम ने की। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारत और थाईलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग और निगरानी करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। भारत ने 157 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धग्रस्त गजा पट्टी में तत्काल बिना शर्त और स्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। महासभा ने दो प्रस्तावों को भारी बहुमत से मंजूरी दी। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने सिंगापुर में वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लीजेन को 14वीं बाजी में हराकर यह खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुकेश ने पूरे देश को इस जीत से गौरवान्वित किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह साधारण उपलब्धि विश्व शतरंज में भारत के लिए एक गौरव का क्षण है। उन्होंने गुकेश को भविष्य में और सफलताएं प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।